بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. تبلیغ در حقیقت انسانی زندگی کا حصہ ہے، اور تبلیغ کا معنی پہنچانا ہے، بلاغا اس کا عرف اصلی ہے، بلوغ پہنچنا، ابلاغ پہنچانا، تبلیغ بھی پہنچانا ہے. لیکن تبلیغ میں ایک اور معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مستحکم طریقے سے کسی بات کو کسی دوسرے تک پہنچانا. یہ تبلیغ آنکھوں تک بھی ہو سکتی ہے، یہ تبلیغ کانوں تک بھی ہو سکتی ہے، اور یہ تبلیغ دل و دماغ یا فکر و قلب تک بھی ہو سکتی ہے. وہ تبلیغ کے جسے قرآن کریم نے بلاغ مبین کہا ہے، یعنی بالکل کھول کر واضح طور پہنچا دینا، وہ دلوں کو میسج پہنچانا ہے. اس بنا پر آپ ہر انسان مختلف انداز سے، اگر اس کا عام معنی لیا جائے، تبلیغ کرتا ہے. آپ کو پانی چاہیے، آپ یا اشاروں سے بتاتے ہیں یا زبان سے ادا کرتے ہیں اور پانی مانگ لیتے ہیں، یا آپ کسی چیز کو، کسی انسان کو کسی طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ متوجہ ہو جائے کہ یہاں پہ خطرہ ہے، یہاں سے گر جاؤ گے، یہاں پہ یہاں سے کوئی آنے والا ہے. غرض یہ کہ تبلیغ یعنی پہنچانا بات کا ایک ایسا عنصر ہے کہ جو انسانی زندگی میں لازم و ملزم ہے، اور کوئی بھی انسان اس سے بری و ذمہ نہیں ہے، کوئی بھی انسان اس سے دور نہیں ہے. لیکن تبلیغ خاص معنی میں یا دینی معنی میں در حقیقت پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچانا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوا، الذین یبلغون رسالات اللہ، جو لوگ اللہ کے اہم پیغام کو، رسالت کو، رسالات یعنی اہم پیغام کو، یبلغون کنٹینیوسلی مسلسل تبلیغ کرتے ہیں، ویخشونہ اور اسی سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی ایک کا بھی خوف نہیں رکھتے. اس میں اللہ نے مسلسل تبلیغ کی بات کی ہے. بس یہاں سے پتہ چلا کہ تبلیغ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جو مسلسل انجام دی جانی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آج گئے اور چار دن کے بعد سو گئے، پانچویں دن اٹھے، پھر چار دن کام کیا، اس کے بعد پھر جا کے سو گئے، اس کے بعد پھر دوبارہ. نہیں، یبلغون فعل مضارع ہے. فعل مضارع یعنی مسلسل کسی کام کے انجام دینے پہ دلالت کر رہا ہے. قرآن کریم میں اس تبلیغ کے لیے، اس پہنچانے کے لیے، پیغام الہی کو پہنچانے کے لیے تقریباً 6 لفظ استعمال کیے گئے ہیں. پہلا بلاغ ہے یا تبلیغ جسے کہیں، جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 39 میں استعمال ہوا ہے. دوسرا تبشیر، تبشیر یعنی بشارت دینا، خوشخبری دینا، سورہ اسراء آیت نمبر 105، یعنی اچھے طریقے سے خوشخبری کے ساتھ اور بشارت کے ساتھ، اچھی خبروں کے ساتھ، اچھی نیوز کے ساتھ کسی کو تبلیغ کرنا. تیسری طرح جو ہمیں ملتی ہے وہ تخویف، خوف دلانا، یہ بھی سورہ اسراء آیت نمبر 59. چوتھی اصطلاح جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے ارشاد. ارشاد اردو والا ارشاد نہیں، بلکہ ارشاد یعنی باب افعال ہے، ارشاد یعنی رشد کی طرف اس کی رہنمائی کرنا، رشد دینا اس کو. سورہ جن آیت نمبر 2. پانچواں جو نقطہ ملتا ہے وہ دعوت ہے. دعوت یعنی دعا، بلانا، پکارنا، سورہ نوح آیت نمبر 5. اور چھٹا جو ہمیں نقطہ ملتا ہے اس پیغام رسانی کے حوالے سے، وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر متعدد صورتوں میں استعمال ہوا ہے. ان میں سے ایک ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 71. یہ مختلف روشیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں کہ تمہاری تبلیغ کو ایسا ہونا چاہیے. تبلیغ حق ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے، باطل نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ مبنی ہو، دلیل والی ہو، ٹھیک ہے نا، और हर किसी के जहनी सतह के मुताबिक हो, ये दो सिफात इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो हम बताएंगे, लेकिन अभी मैं जो रविश तबलीग के उनवान से बात गुफ्तगू कर रहा हूँ उसके लिए मैं यहाँ पर कोई तीन चार नुकात अब जितना भी वक्त बचा है उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। गुरु भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। सबसे पहला नुकता जो तबलीग में जरूरी है वो है जिस जगह पर आप तबलीग कर रहे हैं वो मुनासिब होनी चाहिए, यानी वो मकान, वो जगह, वो प्लेस ऐसी हो कि जो आप तबलीग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप यहां बैठे हैं, यहां सर्दी बहुत है और हवा बहुत चल रही है और मैं एक घंटा 40 मिनट 1.5 घंटा बोले चले जा रहा हूं, ये तबलीग मकानी लिहाज से मुनासिब नहीं है। क्यों? क्योंकि जगह मुनासिब नहीं है, हवा बहुत तेज चल रही है या बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, लोगों की तवज्जो जो है वो कहीं और मबजूल है, कहीं और मुतवज्जे हैं लोग, या मिसाल के तौर पर बैठने की जगह जो है वो बहुत ज्यादा सख्त है और नहीं बैठा जा रहा और मैं भी अल्लाह में डूबा हुआ हूं और बोले चले जा रहा हूं, ये तबलीग मुअसर नहीं होगी। मकान की शिनाख्त जरूरी है कि आप किस जगह क्या बात कह रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हर जगह हर बात कहना मुनासिब नहीं होता, हर बात को उसके सही जाए और उसके महल पर, उसके मुकाम पर अदा करना, ये सही तबलीग कहलाती है। तो मकान की शिनाख्त जरूरी है। आप रोड पे खड़े हैं, आप कहां खड़े हैं? रसूलुल्लाह अपने साहब के साथ जा रहे थे, काफिला रुका सहरा में, रसूलुल्लाह ने कहा यहां पे हम रुकेंगे और लकड़ी जमा की जाए, खाना बनेगा। तो असाब ने कहा रसूलुल्लाह यहां पे तो लकड़ियां नहीं है। रसूलुल्लाह ने कहा जाओ देखो, तलाश करो। अब अगर मसलन फॉर एग्जाम्पल 100 असाब थे तो कितने हाथ हो गए?
200
हाथ। अब 200 हाथ अगर एक एक लकड़ी भी जमा करके लाएगा तो एक ढेर लग जाएगा। यही हुआ, वो असाब गए और एक एक लकड़ी लेकर आए और उन्होंने जमा करनी शुरू की तो ढेर लग गया, वो परेशान हुए, कहने जरा ये हम तो कह रहे थे कि यहाँ पर कोई लकड़ी नहीं होगी। रसूलुल्लाह ने फौरन नसीहत की, देखिए जगह देखकर रसूलुल्लाह ने यही नसीहत, अगर रसूलुल्लाह कहीं और फरमाते शायद उसका वो असर नहीं होता, लेकिन खुद अपने हाथ से प्रैक्टिकल करके देखा कि अभी लकड़ी नहीं थी, जमा की एक ढेर लग गया, एक टीला बन गया। तो रसूलुल्लाह अलैकुम बिल मुहक्करात ज़ुनूब, अपने छोटे छोटे गुनाह के जिनको तुम हकीर मामूली बेवजन समझते हो उनकी फिक्र करो, रोज कयामत खुदावंद आलम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह को जमा करके इतना ही ढेर लगा देगा। ये है मकान की तबलीग के मकान ऐसा था, मकान से मतलब जगह ऐसी थी, उसके हिसाब से तबलीग की। इस बिना पर मुबल्लिग के लिए दूसरी तमाम सिफात के साथ साथ जो जरूरी है, यही वजह है कि जब भी यानी मजलिस पढ़ने का इत्तेफाक होता है या गुफ्तगू करने का इत्तेफाक होता है, जैसे कि मैं यहाँ आ रहा था जब हमें दावत मिली तो मैंने जो मसूलीन थे हमारे उनसे पूछा कि ये बताइए कि ख्वाहरान क्या पढ़ रही हैं, उनकी दुनियावी तालीम की सतह क्या है, ठीक है ना, ये सारी मालूमात ली और किस जगह पर है। ये मकान से मुतालिक आशनाई ज़रूरी है। आप जिस जगह जा रहे हैं तो वहाँ पे मिसाल के तौर पर इलाका कौन सा है, अहले सुन्नत का इलाका है, अहले तशी का इलाका है, मिक्स हैं, सिर्फ शिया रहते हैं, आवाज बाहर जाएगी या अंदर रहेगी, ये सारी चीजों की मालूमात जरूरी होती है ताकि मबादा कोई ऐसा लफ्ज आपसे निकले जो तबलीग की मेहनत पर पानी फेर दे। हुए बाज़ औक़ात के बाद में पता चला कि जनाब वो बात वहां नहीं कहनी चाहिए थी, क्यों? इसलिए कि वो मौका नहीं था, हमारे ध्यान में कुछ और सपोर्ट था, जो फिगर हमारे पास थी वो लेके गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं वहां तो अहले सुन्नत भी थे। बातों बात ऐसा भी हुआ कि मौजू कुछ लेके गए लेकिन जब सूरत हाल देखी तो मौजू को उसी वक्त तब्दील करना पड़ा, होता ही है। مثال کے طور پر ہم سے کہا جناب خطاب کرنا ہے, آپ نے خطاب کے لیے تیاری کر کے گئے مثال کے طور پر 20 سال 22 سال کے لیے, لیکن وہاں پتہ چلا کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور وہ بچے بھی ماشاءاللہ سے اتنے شیطان, کہتے ہیں بچہ اور بندر اگر خاموش بیٹھا ہو تو وہ اب نارمل ہوتا ہے, اور بچے بھی آپ کو بتائیں کہ اچھلنا کودنا جیسے چھلا بھی ہوتے ہیں شیطان بچے, اب ان کو ان کے لیے بولنا ان سے خطاب کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, فوراً جو ہے چینج کیا. تو پہلے سے آشنائی ضروری ہے آپ کے لیے, آپ مجلس پڑھنے جائیں, درس دینے جائیں, کسی بھی فنکشن میں جائیں, کسی بھی نجی محفل میں جائیں, پوچھیں ضرور کہ ہم جس جگہ جا رہے ہیں وہ کیسی جگہ ہے, لوگ کیسے ہیں, لاؤڈ سپیکر کے باہر ہے اندر ہے, شیعہ ہیں سنی ہیں, کس عقیدے کے لوگ ہیں, یہ ضروری. دوسری چیز جو نقطہ وہ ہے وقت کی شناخت, زمان کی شناخت, مکان و زمان, دوسرا نقطہ ہے زمان یعنی وقت, کہ آپ کس وقت کیا بات کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پر 2:30 بج گئے اور میں بولے چلے جا رہا ہوں اور آپ کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں, آپ کی توجہ جو ہے وہ برتنوں کی طرف ہے کہ جو دسترخوان پہ لگائے جا رہے ہیں, پوری توجہ ادھر کی, جس طرح بھی ہو مولانا چھوڑے اور ہم جا کے گانا گائیں, یہ تبلیغ مؤثر نہیں ہوگی. لہذا بعض اوقات ہوتا ہے یعنی ایسا ہوا کہ مثال کے طور پر 1 گھنٹے مجلس کا وقت تھا کہ ہمیں 5 سے 6 بولنا ہے, 6:45 مثال کے طور پر ہم نے گفتگو شروع کی, 15 منٹ کی مجلس پڑھ کے نیچے اتر رہا, ضروری نہیں کہ آپ 1 گھنٹہ سنائیں کہ جناب ہمیں آپ نے بلایا اور نہیں بٹھایا اور نہیں ٹائم دیا اور ممبر نہیں دیا, آپ 15 منٹ کی مجلس پڑھیں, یہ خود ایک تبلیغ ہے لوگوں کے لیے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے دوسرے شہر گئے, دوسرے شہر, ایک شہر سے دوسرے شہر گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دن ایک دفعہ ایک شہر سے دوسرے شہر گئے, 3-4 گھنٹے کے بعد بلاخر ممبر ملا 1:15 بجے, 1 بجے اذان ہونی تھی, 15 منٹ کی مجلس بشمول مسائل پڑھی, واپس اتر رہا کہ جناب 1 بجے اذان کا ٹائم ہے ہمیں جماعت میں شرکت, یہ خود ایک تبلیغ. تو بات اوقات زمان بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ لوگ بھوکے نہ ہوں, لوگ تھکے ہوئے نہ ہوں. اب آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے اور میں جو ہوں اللہ میں مجذوب اخلاقیات کا درس دیے جا رہا ہوں, اس اخلاقیات کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی توجہ, میرے استاد فرماتے ہیں شاید کسی نے سنا ہو کہ یہ بہر ایک اسٹینڈرڈ نہیں ہے لیکن انہوں نے سمجھانے کی بات کی کہ 20 منٹ تک جو آپ کا سامنے ہے جو مخاطب ہے وہ دل سے آپ کی بات سنتا ہے, 30 منٹ تک وہ ایسے ہوتا ہے اور 40 منٹ کے بعد وہ اونگنے لگتا ہے. یہ بات ہے, ممکن 1 گھنٹہ بھی ہو, ضروری نہیں یہ اسٹینڈرڈ ہو یہ کہ 40 منٹ یا آدھا گھنٹہ, لیکن یہ بات ہے کہ تقریر کے جتنے بھی ڈیوریشن اور دورانیاں ہیں شروع کے 10 منٹ اور آخرت کے 10 منٹ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. کیوں
ایسا نہیں ہوتا نا
جی, میں وہی کہہ رہا ہوں اسٹینڈرڈ نہیں ہے یہ, لیکن میں وہی اب اسی طرف آ رہا ہوں کہ شروع کے 10 منٹ, میں مجلس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں مجلس ہماری بہرحال ایک روایتی ایک اس کی شکل ہے اور لوگ اس کو سنتے ہیں, لیکن اب اس میں بھی مثال کے طور پر کل ایک جگہ بیٹھے تھے راولپنڈی لاہور میں, تو ایک مبلغ کی ہم تقریر سن رہے تھے, نوجوان مبلغ تھا اور مولانا بھی نہیں تھا, اس نے خود ہی سے کتاب پڑھ کے اس نے تبلیغ شروع کی اور نوجوان بہت فیمس اور بہت پاپولر تھا امریکی نوجوانوں میں, یورپی نوجوانوں میں. تو جن مولانا کے گھر تھا انہوں نے کہا کہ میرا بھانجا امریکہ میں پیدا بڑھا ہے, تو کہتی پاکستانی ہندوستانی آتے ہیں ان کو چیخنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا, اٹھا پٹک کریں گے, کہیں گے ان کو یہ انداز پسند نہیں آتا, یہ پاکستان ہندوستان میں تو چل جاتا ہے, لیکن اب جو ہے نوجوان نظر اس سے بھی جو ہے نا متنفر ہوتی جا رہی ہے. انسان سیدھی سیدھی بات کرے, سیدھے سے نتیجہ دے, اس کے بعد ختم. ये जो आप बात कह रही हैं वही बात है जो मैं कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड नहीं मजलिस का एक अंदाज हमारे यहाँ है वो अपनी जगह है, लेकिन आप कहीं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चर डिलीवर करना चाहती हैं, नौजवान तालिबात को बुलाना चाहती हैं, इसलिए देखिए अगर आप ये चाहेंगी कि आपके दस में सिर्फ सब मुहज्जबा हैं और उन्होंने दस्ताने पहने हुए हों, नजर कुछ नहीं आ रहा हो और ऐसा हिजाब हो वैसा हिजाब हो, अगर आप पहले मरहले में ये चाहती हैं तो ये मुमकिन नहीं है। आपकी तबलीग ये होनी चाहिए कि आप उस लड़की को जो बेहिजाब है, जो बाल खुले रखती है, जो तरह तरह के कपड़े फैशन के पहनती है, आप उसको लेकर आए। यह तबलीग जो दीनदार है ठीक है वो दीनदार है, लेकिन जो बेदीन है उसको दीनदार बनाना, उसको दीनवार बनाना, ये तबलीग है। तो शुरू के 10 मिनट और आखिर के 10 मिनट ये बात याद रखिएगा। आप यहां पे लेक्चर दे रहे हैं, याद रखिएगा कि 40-45 मिनट का लेक्चर मामूलन होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, शुरू के 10 मिनट बहुत तवज्जो से सुने जाते हैं, आखिर के 10 मिनट बहुत तवज्जो से सुने जाते हैं। इसलिए कि जब आपने लेक्चर शुरू किया तो उसे पता है कि लेक्चर मिसाल के तौर पर 5 बजे से लेकर 5:40 से 5:45 में खत्म हो जाएगा, तो शुरू में तवज्जो होगी, उसके बाद उसकी तवज्जो गायब हो जाएगी। फिर चूंकि उसे पता है कि लेक्चर खत्म होने वाला है आखिर के 10 मिनट, तो कोशिश ये करें कि जो कुछ भी आपने देना है वो शुरू के 10 मिनट में दे और आखिर के 10 मिनट में दे। जो भी कलीदी नुकात आपने बयान करने हैं वो शुरू के या आखिर के 10 मिनट में दे, और कोशिश करें कि समराइज करें गुफ्तगू को, इतनी गुफ्तगू फैलाएं कि उसको समेट सके, इतने घोड़े दौड़ाएं कि उनको वापस ला सके। ना ये हो कि जनाब बात से बात निकली चली जा रही है, फलसफा भी हो रहा है, विदाया भी हो रही है, निहाया भी हो रही है, शरलुमा के भी इशारे दिए जा रहे हैं, बात इतनी फैल गई अब समेटने में जनाब मुश्किल हो रही है। नहीं, इतनी गुफ्तगू करें जिसको समेट सके, समराइज करें, खुलासा करें, जमबंदी करें। ये जो मैं कह रहा हूं कि शुरू के 10 मिनट आखिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम तबलीग के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तबलीग के लिए कुरान ने 6 रुकात बयान किए हैं। तबलीग यानी पहुंचाना, यानी दिलो दिमाग तक पहुंचाना, अब पता चल गया तबलीग जरूरी है। हर इंसान अपनी जिंदगी में तबलीग करता है, दुनिया में तबलीग भी करता है और दीनी तबलीग भी करता है। तबलीग यानी प्रोपेगेंडा, तबलीग यानी तशहीर, तबलीग यानी एडवर्टाइजमेंट, तबलीग यानी इश्तिहार, मार्केटिंग की दुनिया आई है। एक बेकार से बेकार चीज को टीवी एड जो है वो बेहतरीन बना देता है, पूरी कौम लपकी हुई होती है उसकी तरफ। यह तबलीग, जब मीडिया एक बुरी से बुरी चीज को अच्छा बना के पेश कर सकता है, तो क्या आप दीनी मफाहिम को जदीद जबान में नौजवान नस्ल के लिए जो दीन से बेगाना है, क्या उनके लिए जाजिब, पुरकशिश और अट्रैक्शन वाला नहीं बना सकती? बना सकती। खुलासा, शुरू के 10 मिनट उसमें बयान करें, उसके बाद जो रुकात बयान करें, मैं ही नहीं कह रहा हूं कि जो बीच का जो वक्त है वो बेकार है, नहीं, वो भी, क्योंकि सब सामयीन एक सतह के नहीं होते, किसी को अम्मी याद आ रही होती है, किसी को अब्बा याद आ रहे होते हैं, किसी को भैया याद आ रहा होता है, किसी की चाय चढ़ी हुई होती है, किसी के कपड़े नहीं सूखे, बारिश हो रही है, अभी तो कपड़े धोए थे, मुख्तलिफ किस्म के लोगों को फिक्र ख्यालात होते हैं। आपको तो नहीं, मुझे नहीं पता आपके जहन में क्या है, लेकिन आपको पता है, लिहाजा मैं जो हूं जब आप आएंगी कहेंगे अच्छा ये मौलाना साहब है, चाहिए ऐसे ऐसे, अच्छा ठीक। 10 मिनट आपने तवज्जो से सुना, फिर आखिर होता है बाज़ औक़ात तकरारी चीज होती है, जहन जो इधर उधर निकल जाता है, फिर आपको पता है कि जनाब 5:00-6:20 में खत्म हो जाएगा, आपने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, वो आखिर में जमबंदी करें। खुलासा, आज हमने 6 चीजें पढ़ी। पहली चीज तबलीग, तबलीग का माना, तबलीग के लिए कुरान में क्या बयान किया गया, तबलीग की अहमियत क्या होती है, तबलीग कितने किस्म की होती है, ये 5 प्रकार हमने आज पढ़े। वस्सलाम नामतमाम। अगर इस तरीके से अगर आप सिस्टमेटिकली मुनज्जम अंदाज से अपने आप को लेके चलेंगे, अभी इसमें बहुत सारे नुकात हैं क्लास लेने से मुतालिक, कोशिश ये करें कि आपकी तबलीग जो है वो सुन्नती ना हो, सुन्नती रिवायती तबलीग ना हो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پانچ منٹ کا آپ نے خطبہ پڑھا وہ بیچارہ جو دیکھ رہا ہے منہ کھولے ہوئے مولانا کیا پڑھ رہے ہیں مختصر کریں خطبہ ضروری نہیں قرآن کی آیت نہیں ہے کہ پانچ منٹ کا خطبہ ہونا چاہیے تین آیتیں اس میں ہونی چاہیے بعض اوقات ہوتا ہے ہم مختصر کر دیتے ہیں جی 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 اس کی طرف آ رہا ہوں میں مکان کی شناخت زمان کی شناخت تیسری چیز یہ کہ اس ماحول کو دیکھیں تیسرا اہم نقطہ وہ شناخت شناخت سامعین کی شناخت جن کو آپ تبلیغ کر رہی ہیں جن کے لیے آپ تبلیغ پیش کر رہی ہیں ان کی شناخت ضروری ہے دینی طور پر دنیاوی طور پر کس تہذیب و ثقافت سے ہیں آپ نئی جگہ گئے آپ کو نہیں معلوم مجمون معلوم ہے پوچھیں سوال کریں کوئی حرج نہیں ہے ذہنی سطح یہاں پہ ایک اور نقطہ آ جاتا ہے وہ ہے نفسیات نفسیات سے آ جائیں یعنی بنیادی نفسیات جو ہیں تبلیغ کے سلسلے میں انسانی نفسیات سے آگاہی آپ پہ لازم و ضروری ہے مثال کے طور پر میں تین چار رنگ کے کپڑے پہنے ہوں ابھی تو خیر میں جلدی میں آیا ہوں یہ بات میرے بھی خلاف جاتی ہے لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں تین چار کتھے رنگ کا سفید کالا رنگ کا سفید رنگ کا اور ایک مثال کے طور پر کیا رنگ ہوگا اس کا جو بھی رنگ ہے بعض اوقات جو ہے وہ سامنے والا کیا کر رہا ہوتا ہے وہ بعض اوقات آپ کے ابا کو دیکھ رہا ہوتا ہے بعض اوقات اس کڑھائی کو دیکھ رہا ہوتا ہے بعض اوقات آپ ماما کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہمارے استاد کہتے تھے کہ میرے اس وہ اپنے استاد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی جو آپ کا انداز ہے جو نفسیات ہے لوگوں کی بعض اوقات ہوتا ہے آپ اٹھ کے آ جاتے ہیں ایسے لیکن سادہ لباس ہو یا ایک رنگی لباس ہو وہ زیادہ آسان ہے اور وہ اتنا توجہ کی سبب نہیں بنتا ہے ورنہ کیا ہوگا کہ جو سامنے والا ہے نا وہ آپ کے لباس میں آپ کے ایکشن میں یا آپ کی اس چیز میں کھو جائے گا وہ کہتے تھے کہ میرے استاد جب درس دیتے تو یہ جو پٹی ہوتی تھی اگر نا یہ ان کی ڈھیلی ہوتی تھی اتنی ڈھیلی ہوتی تھی کہ وہ ایسا 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 کر کے جو ہے نا وہ کھلتی رہتی تھی وہ انہوں نے کر کے ایسے بتایا تو کہہ لیں گے میری پوری توجہ جو ہے درس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ یہ کب کھلے گا کب گرے گا ٹھیک ہے نا تو ہمارے استاد جب درس دینے جاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے جیسے یہ تو پوچھتے تھے ہم سے میرا ماما ٹی وی کے مطابق ہے پوچھتے تھے کوئی حرج نہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا آئینہ نہیں ہے یہاں پہ میں نے پوچھا بھی میرا آئینہ میرا ماما ٹی وی کے مطابق ہے یعنی میں ٹھیک لگ رہا ہوں مطلب ایسا تو نہیں داڑھی پھیلی ہوئی ہے ماما ٹیڑھا رکھا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اللہ میں مجذوب ہوتے ہیں تو وہ اب ان کا ماما ٹیڑھا ہے تو لوگ ان کو دیکھے جا رہے ہوتے ہیں میں آپ کو اپنا ایک تجربہ یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آیت اللہ لنگرودی مسجد سلماسی میں قوم میں جائیں مقام نہیں نے نماز پڑھاتے تھے انقلاب سے پہلے وہاں نماز پڑھاتے تھے تو ان کو اٹھنے میں مشکل ہوتی تھی تو جب وہ بحول اللہ کے کھڑے ہوتے تھے چھوٹی سی چوکی ان کے پاس سیدھے ہاتھ پہ رکھ دی گئی تو اس میں زور دے کے کھڑے ہوتے تھے تو تھوڑا سا ایسے جھوم کے اور پھر یوں سیدھے ہو کے ٹیڑھے ہو کے کھڑے ہوتے تھے کچھ دن بعد دیکھا کہ ایک صاحب آیا اور وہ بھی ایسے ہی جو ہے نا وہ یوں ہو کے کھڑے ہو رہے انہوں نے کہا کہ ایک سال پوچھا بھائی آپ کیوں مولانا ایسے کھڑے ہوتے ہیں مولانا کھڑے ہوتے ہیں آپ کیوں کہ میں سے یہ بھی کوئی مستحب ہوگا بعض اوقات آپ کو بڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کیا جاتا ہے शिनाख्त जरूरी है सामे की कि जिसको तबलीग कर रहे हैं उसकी ज़हनी सतह क्या है, उसकी इल्मी सतह क्या है, उसकी तहजीब और सकाफत क्या है। ये बुनियादी चीजें, अगर ये चीज नहीं होगी तो मिसाल के तौर पर मुझे अच्छी तरह याद है मैं इस्लामी इनकलाब के दौर में हमें ईरान में एक दूसरे शहर ले जाया गया और वहां पर स्कूल की तालिबात से हमें खिताब करना था। उस जमाने में मुझे याद है मैं मामूम नहीं हुआ था, तो वहां पे खिताब करते करते मैंने कहा कि ये कुर्रा जमीन, अब जो कुर्रा जमीन कहा तो कोई 400-500 तालिबात थे, वो सब के सब बड़े जोर से हंसी। खैर बात आई गई होगी, जब लेक्चर दे के हम स्टाफ रूम में आए तो मैंने पूछा कि ये सब कुर्रा जमीन हंसे क्यों पे, तो कहने की कुर्रा जो है वो सब गाय के बच्चों को गाया जाता है। आशना ही जरूरी होती बात हो बात। इंसान फारसी में कुर्रा को कहते हैं कुर्रा जमीन, हमारी कुर्रा जमीन कहा जाता है, तो मेरे दिमाग में वही तलफ्फुज़ था, मैंने कहा कुर्रा जमीन यानी जमीन का बछड़ा। तो ये चीज तो आशना ही जरूरी है, नफ्सिया से आशना जरूरी है। बाज औकात जो है वो एक लफ्ज एक माहौल में सही होता है लेकिन दूसरे माहौल में वो सही नहीं होता या उसका मनफी माना लिया जाता है। बात होता है एक लफ्ज बहुत ही मुस्तमल है इस्तेमाल किया जाता है लेकिन एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता। शिनाख्त जरूरी है कि क्या जहनी सतह क्या है। बात आप एक बहुत ही पढ़ा लिखा मजमा है, टीचर्स हैं प्रोफेसर्स हैं और आप उनके सामने जाकर बहुत ही छोटी हो सतह अल्लाह एक है पंचतत्वान रसूल इतने और शौदा इतने और फला इतने, ये तबलीग मुसर नहीं होगी। मैं जब आ रहा था यहाँ पे तो मैंने पूछा कि जो तालिबात हैं उनका इल्मी स्टेटस क्या है, यानी कौन से कारशनासी में कारदानी में अरशद में किस में उनका मिक्स है। तो मैंने कहा ये मिक्स जो आप कह रहे हैं ना कि मखलूत होंगे सर, ये मुनासिब नहीं है क्योंकि पहले जो बहुत ही इब्तदाई सतह के खौरान हैं बाज बात उनके लिए बहुत ज्यादा कहना जल्दी है, ठीक है ना। मैं मुआफ़िक नहीं था लेकिन पहले चूंकि दोस्तों ने उसको अरेंज कर लिया तो इसलिए फिर मैंने बहुत ज्यादा उनसे इसरार नहीं किया कि अलग अलग रखें, लेकिन उसूली तौर पे जो है वो अलग अलग गुफ्तगू होनी चाहिए थी कि जो कारशनासी की खौरान है जो थोड़ी सीनियर लेवल की हैं वो अलगों की क्लास हो और जो छोटी और या इब्तदाई सतह की क्लासों में जो खौरान हैं उनके लिए अलग किस्म की क्लास हो। लेकिन बहर अभी तो इसी तरह लेके चलते हैं, कल देखते हैं क्या कल क्या होता है। नफ्सियात, अच्छा तीसरी चीज ये कि मैं चौथी चीज वो ये कि मुबल्लिग का जो अंदाज है और लिबास है वो ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत ज्यादा चुभने वाला ना हो, यानी बहुत आगे गया मैं बहुत ही आगे अब आप पूरी तवज्जो से नहीं क्या कह रहे हैं, जब बहुत चीखना शुरू कर दूं तबलीग ये होती है छह नुकात, जरूरत नहीं चीखने की है एनर्जी जाया करने की। लिबास आपका ऐसा होना चाहिए, मैंने देखा है यानी क्योंकि बहरहाल तवज्जो नहीं होती बाज औकात, बाज फहारा जब तबलीग के लिए जाती हैं तो वो या चूड़ियां पहनी भी होती हैं वो मजलिस पढ़ रही हैं मसलन, देखे से मतलब मैंने नहीं देखा लेकिन मुझे बताया गया इसलिए मैं कह रहा हूँ। कल का जो हमारे उस्ताद थे वो कहते थे कि इसलिए कह रहा हूँ बाद मौलाना ने देखा है, ये भी मसला हो जाता है। प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था माह रमजान का और माह रमजान से पहले माह रमजान का प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था। अब जाहिर बात है इंसान प्यासा होता तो पानी पीता है तो पानी रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा ऐसा करो इस पानी को हटा दो, क्यों हो तो प्यास प्यासे निकलेंगे रिकॉर्डिंग में ना है, क्यों कहेंगे ये प्रोग्राम रमजान में देखा जाएगा, जो लोग देख रहे हैं उनको नहीं पता कि ये रिकॉर्डिंग है या रमजान से पहले की, वो कहेंगे लोग मन पूरी कौम को तो दर्द रोजे को खुद पानी पी रहा है। मैंने देखा यानी देखने से मुराद बिल मुशाफा नहीं देखा, ये मुझे बताया गया कि मिसाल के खारान जो है वो चूड़ियां पहन के गए वो हाथ हिल रहे थे चूड़ियां हिल रही है, पूरी खातून जो है वो कितने तोले किए हैं, इसका सेट क्या है, इसका डिजाइन क्या है, ये फलाना है, ये आर्टिफिशियल है, ये असली है। उसमें पूरी तवज्जो जो है उसमें हो गई। क्या मसलन बहुत से लोगों आदत है 10 अंगूठी पहनने की, तो वो साथ कहते थे ये एक अंगूठी दो अंगूठी बस काफी है, ये चार चार पांच पांच यूं यूं करके जाओगे ना तो सामने वो हो मौलाना की अंगूठियां देखो बड़ी कीमती अंगूठी पहनी है। तवज्जो जो है लिबास ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत ज्यादा चुभने वाला ना हो, अंदाज ऐसा होना चाहिए कि जो तवज्जो को बहुत ज्यादा मुनहरिफ ना करे। इस बिना पर एक और नुक्ता मैं आपको देखे जा रहा हूं, ये इसमें बहुत ज्यादा तफसील है लेकिन जो कि हम बहुत ज्यादा तफसील में गुफ्तगू इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास जो मौजूआत हैं वो फिर रह जाएंगे, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इस पर तफसील से रोशनी डालेंगे। इसलिए कि फिर जब आपका अखलाक आपका किरदार ठीक है ना मुख्तलिफ रविशों से आशनाई जवानों की जबान में गुफ्तगू ठीक है ना और जवानों के जो आतिफी मसाइल होते हैं जो एहसासात होते हैं जो उनकी उमंगें होती हैं उसको सामने रखते हुए गुफ्तगू करना ये मुअस्सर होता है। लेकिन अगर आप उनके एक शख्स आया है कभी कोई प्रॉब्लम लेके कोई मसला लेके अब आप जो है ना आपने मसला बताया तो उसको जो है ना दर्ज देना शुरू कर दिया, उसको कहते हैं हमारे यहाँ पी जाना। पता नहीं आप क्यों वो कराची में मसलन इस तरह मारूफ है पी गए यानी बस उसको अव्वल से लेकर आखिर तक एक ही दर्स में सब कुछ सुना दिया, भाई जो मसला पूछने आया पूछ के चले जाए खत्म। अव्वल से लेकर आखिर तक जो है ना उसको तबलीग करना कि ये भी कर लो ये भी कर लो ये भी कर लो मुनासिब नहीं है। तो अंदाजा मसाइल की तरफ तो शिनाख्त जो मैं कह रहा हूं ना नफ्सियात से शिनाख्त ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखने में आता कि मसलन बहुत से मुबल्लिगीन जो है वो तब्दील करने जाते हैं लिबास उनका ऐसा होता है या अंदाज ऐसा होता है या जमान और मकान की शनाख्त उनका हासिल नहीं होती है जिसकी वजह से उनका बहुत अच्छा पैगाम भी जो है वो कमा को नहीं पहुंच पाता। तो ये जरूरी है कि आप जाने। दूसरी चीज ये कि हमेशा अपने आप को रिवायती तौर तरीकों में मुनसिब ना रखें बल्कि जदीद से जदीद मेथड को लेकर आए। हमारे साथ कहते थे कि जो मौलवी या जो मुबल्लिग मसलन लोगों से गुफ्तगू करता है उसका अमामा आगे से बिल्कुल फिटफाट होना चाहिए, जो पीछे नमाज पढ़ा जो नमाज पढ़ाता है लोग उसको ज्यादा पीछे से देखते हैं नमाज पढ़ी जल्दी से निकल गए उसका अमामा पीछे से ज्यादा फिटफाट होना चाहिए और जो दोनों काम करता है उसका अमामा दोनों तरीकों से फिटफाट होना चाहिए। होता यह है कि बाद अवकात इंसान की तवज्जो नहीं होती है यानी इंसान मुस्तहब है कि इंसान मुरत्तब होके निकले, अमामा टेढ़ा है अबल अटकी हुई है। अब बाद अवकात होता है कि वो पूरी तवज्जो जो है वो सामने वाले की तरफ होती है कि किसी तरह मौलाना जो अपनी अबा सीधी कर ले या अमामा सीधा कर ले या चश्मा सीधा कर ले। तो ये मुबल्लिग का काम है ताकि वो असल मैसेज को जो उसका पैगाम जो रूह है उसको दे सके। उसके लिए जरूरी है कि एक तो जवानों के जो मसाइल हैं उससे आश्रय जरूरी है, दूसरा ये कि जो जदीद रविशें हैं एक रविश है क्लास जारी यानी आप आए एक लेक्चर व्हाइट बोर्ड पर यहाँ पर डिलीवर करें इंशाल्लाह अगर कल मौका मिला तो मैं उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू करूँगा यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे उनको फरामोश नहीं करूँ। बाद अवकात ये होता है कि आप गुफ्तगू कर रहे हैं लेकिन सामने वाला जो है ना आप एक ही पिच में एक ही रिदम में गुफ्तगू कर रहे हैं सामने वाला भी उसी में जो है ना वो चल रहा होता है। बाद अवकात उन सामईन को उस खास हालत से बाहर निकालने के लिए इंसान को चाहिए कि हाथ का इशारा करे या बाद अवकात कोई लफ्ज थोड़ा सा लाउडली बोले ताकि वो जो एक खास अंदाज से आवाज आ रही थी वो सिलसिला टूट जाए और एक नए अंदाज से थोड़ा सा चौकन्ना हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई जो सो रहे हैं उनकी बेदारी के सलवार भेजें, अब ये थोड़ा सा तौहीन आमेज भी है ठीक है ना। अब जो बेचारा सो भी रहा हूँ वो ऊँग भी रहा होगा, कहते हैं कि एक मौलाना तबलीग के लिए गए तो पूरे अशरे में उन्होंने देखा एक साहब जी मेंबर के पास यहाँ के बैठ जाते थे और सर जो बाकी नून सर ला जा के सुनते रहते थे, बड़े खुश हो गए ये शख्स है सबसे पहले आता है सबसे आखिर में जाता है, इसने तो अशरा बिल्कुल जना सुना होगा। अशरा खत्म हो गया, कहने लगे कि बताइए कि आप सबसे पहले आते थे सबसे आखिर में उठते थे, क्या समझ में आया? कहने लगे घर में शोर बहुत होता था, पहले आके सो जाता था, जो जो हिलते रहते थे वो ऊँगते रहते थे। तो बात ये ना हो उस हालत से निकालने के लिए जरूरी है कोई एक जुमला, इंसान अगर रोजे कयामत बस शुरू हो गए अगर तैयारी ना करे, और इंसान अगर रोजे कयामत तैयारी ना करे मफ़हूम खत्म हो जाएगा उसका, इंसान अगर रोजे कयामत तैयारी ना करे, ये जो आवाज दे रहा ना ये खुद ब खुद जो है वो आपके सामने को आपकी तरह उसकी तवज्जो को खींच के लाएगी। ये मतलब इंसान का चाहिए कि वो रोजे कयामत तैयारी करे, अल्फाज के साथ आवाज का उतार चढ़ाव, यानी ये बहुत जरूरी है, तबलीग में भी काम आएगा मजलिस में भी काम आएगा और क्लास में भी काम आएगी। अब आप मिसाल के तौर पर मसलन क्लास, अब आपने जो है ना एक जुमला लिखना है, अब आप खड़े हुए और आपने यहाँ लिखने शुरू किया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो क्या कर रहे होते हैं, लिखे जा रहे होते हैं पीछे से, क्लास जो है वो अपने काम की जा रही होती है, कोई फर्रा दे रहा है कोई ये दे रहा है कोई वो दे रहा है। तरीका ये कि जो लिख रहे हैं उसे बोलते रहे बिस्मिल्लाह आजरकल्ला या साहिब जमान अज्जलल्लाहु ताला, ताकि जो 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 पीछे बैठा है जो देख नहीं पा रहा आपकी तहरीर को उसकी तवज्जो जो है वो आपकी तरफ रहे। अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज करें, जैसे मैं अभी खड़ा हो गया, अब मैं बैठे रहता तो आप भी उसी एंगल में इस एंगल में इस एंगल बैठे रहते, लेकिन मैं जब खड़ा हूं तो फौरन आपकी तवज्जो जो है वो, आप मजलिस में तो नहीं हो सकते खड़े लेकिन उसमें आप अपना अंदाज तब्दील कर सकते हैं। ये वो चीजें होती हैं कि जो सामने की तवज्जो को आपकी तरफ खींच के लाती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल उसी अंदाज से चलते रहे तो आप अपने सामने की तवज्जो को जो एक घंटा 40 मिनट दे रहा है वो नहीं करते। तीसरी चीज ये कि नौजवानों के जो मसाइल हैं, नौजवान लड़कियों के लड़कों के जो मसाइल, आपका ताल्लुक जो है वो खौरान से होगा, तो नौजवान बच्चियों के जो मसाइल होते हैं घरेलू मसाइल हैं शादी के मसाइल हैं, बाज़ औक़ात जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी से वाबस्तगी की दोस्ती की फ्रेंडशिप के मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल को ये कह के हराम हराम कह के जो है ना वो दूर मत करें, पर कोशिश करें कि आप उनको करीब से करीब कर सकें, उनके उन मसाइल की तरफ तवज्जो होनी चाहिए कि एक यूनिवर्सिटी की लड़की को कैसे हैंडल किया जाए, एक नौजवान को कैसे तबलीग की जाए, एक वो बच्ची आई आप औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप जो है एक बार आपको नजर नहीं आना चाहिए, आप जो है बिल्कुल इस तरह कवर करें, आप बुनियादी चीजों को उसके जहन में डालें, वो बुनियादी चीज अगर उसके जहन में बैठ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ब खुद जो है वो आपकी तरफ और इस्लाम की तरफ आएगा। ये आपका काम है कि आप इस्लाम की प्रोडक्ट को किस तरह सेल करती हैं, किस तरह एडवर्टाइज करती हैं, किस तरह उसकी तशहीर करती हैं, किस तरह तबलीग करती हैं, ये फन आपके पास आना चाहिए, ये फन आपके पास होना चाहिए कि आप किस तरह भेज रही हैं पैगाम को उसके जहन तक, उसकी आंखों तक भेज रही हैं ये पानी है, उसके कानों तक पहुंचा रही हैं ये बताना चाह रही है पानी है, या उसकी तवज्जो को मंजूर कराना चाह रही हैं और उसके दिल में उसके रूह में एक तिचनगी पैदा करना चाह रही है, पानी है इसे पियो, इसे देखो नहीं इसे सुनो नहीं इसको इसको पीने की कोशिश करो, ये प्यास ईजाद करना ये भी आपका काम है। ऐसा नहीं है कि आपके जनाब नहीं प्यास हम ईजाद नहीं कर सकते, नहीं आपकी रविश अगर ऐसी हो, मालिक अश्तर जा रहे थे इस शख्स ने नादे का कलमा अदा किया जब वो चले गए तो जिस शख्स ने नाजी पर कलमत अदा की तो उसके साथ एक शख्स खड़ा, उसने कहा पता ये कौन है? कहा नहीं, कहीं मालिक बेशतर अली की फौज का सिपा सालार, बहुत बहादुर थे, बहुत चर्चा था, घर घबरा गया, पीछे भाग। मालिक बेशतर को देखे मस्जिद में जा रही, भी मस्जिद में गया, देखे मालिक बेशतर नमाज पढ़ रही, बैठ गया। उसके बाद जो है मालिक बेशतर ने दुआ की, फौज और माफी तलाफी की, मुझे मालूम नहीं था क्या मालिक बेशतर। उन्होंने कहा भाई मेरा इरादा नहीं था आने का, मस्जिद में तो कहीं और से जाता, जब तुमने मेरे साथ ये बुरी हरकत की तो मैं आया और मैंने ये दुआ की, खुदावंद मेरे इस भाई के गुनाह माफ कर, मैंने इसे माफ किया। ये तबलीग जो है ये असर करेगी इसके लिए। वक्त पूरा हो गया, अगर कोई सवाल है इस जिम्मे में बयान करें, कल इंशाल्लाह जो है वो कल अगर फौरन 5 बजे ठीक तशरीफ ले आए तो हम बिला तअक्कुर जो है गुफ्तगु का आगाज कर देंगे। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। सवाल सबके समझ में आ गया? बिले तक लोग बताए वाजे हैं? कोई सवाल है जिन में, कोई मफहूम रह गया हो, कोई नुक्ता नहीं? ठीक, दुरूद भेजे मोहम्मद। कितना टाइम है हमारे पास अभी? 6:15 हो रहे। कितना टाइम है हमारे पास? नहीं नहीं अजान में जी 15 मिनट हैं। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद से बात करते हैं। करेंगे आप? बस करें जी। नहीं चले थे मुराद बाहर चले या
नहीं? नहीं आगे
आगे चले। इसलिए देखें मैं इस बात अगर कोई खार थक गई है तो गाना वोट के जा सकती है बिला तकलीफ। नहीं जी नहीं नहीं कोई जबरदस्ती नहीं है, बाद में पांव सुन हो जाएगा तो मुझे आप सरबा सुनाएंगे। एक और चीज जो मुबल्लिग के लिए जरूरी है वो ये कि मौजू का इंतखाब, मौजू का इंतखाब इसलिए जरूरी है और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास आपके मुखातब की आपके सामने की जहनी शिनाख्त होनी चाहिए। बात होता है कि मेरे पास सवाल करने आते हैं या जिनके बारे में मुझे नहीं मालूम, पूछते बेटा आपकी उम्र क्या है, आपकी तालीम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। तीन चीजें पूछता हूँ, तालीम पूछता हूँ यानी फहम का स्टेटस क्या है, उम्र पूछता हूँ और शहर का नाम या मुल्क का नाम पूछता हूँ ताकि मुझे सकाफत का अंदाजा हो सके। किस सबक सिंधी सकाफत से पंजाबी है, बलोच है, पठान है, महाजर है, हिंदू है, सिख है, कौन है बिला है? क्योंकि बाज़ औक़ात आप एक चीज बात बता रहे होते हैं लेकिन वो उसकी सकाफत मायूस समझी जाती है, तो इन चीज़ों को भी ख्याल रखना जरूरी है। मौजू की शिनाख्त ये उसी सूरत में होगा जब आपको पता है कि आपके जो सामईन हैं वो इस लेवल के हैं, सब कारशनासी के हैं, कारशनासी अरशद के, सब इंटर पास हैं, सब ग्रेजुएट हैं, सब डॉक्टर्स हैं, तो फिर मैं उसी लेवल की बात करूंगा। वहां पर आपके लिए जरूरी है कि आप मौजू का इंतखाब करें। आप यहाँ पर तो मुख्तलिफ आरन है बहर मजबूरी है लेकिन मौजू की शनाख्त सामईन की शनाख्त से वाबस्ता है। जब सामईन की शनाख्त आ गई कि सब 30 साल से ऊपर है, मेच्योर हैं, पुख्ता हैं, रशीद हैं, तो फिर अगले मौजू की शिनाख्त भी उसी। फिर ये देखें कि आप किस वक्त मिसाल के तौर पर क्या चीज डिलीवर करना चाह रहे हैं। ये चीजें जो हैं उसके लिए सबसे ज्यादा बुनियादी चीज मौजू के लिए जरूरी है वो ये है कि बाज़ औक़ात एक खास मौजू लेकर आप उस पर गुफ्तगू करते हैं। बाज़ औक़ात ये जरूरी नहीं होता, बाज़ औक़ात यानी आप पे जरूरी होता है कि आप मुख्तलिफ मौजूदात को टच करते हुए उनको थोड़ी थोड़ी शराब बयान करते हुए आए। या मिसाल के तौर पर आप आंख के बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं, आंख के गुनाह के बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं। आंख क्या है, आंख की तारीफ, आंख क्या काम करती है, आंख को नुकसान किस चीज से होता है, कुरान ने आंख के बारे में क्या कहा है, नजर के बारे में अहदीस ने क्या कहा है, ठीक है ना। हम जो देखते हैं उसका क्या असर हमारी जिंदगी पे होता है। अब आपने एक ही मौजू को लेकर मुख्तलिफ हवालों से जब डिस्कस करना शुरू किया, कुरान भी आ गया, हदीस भी आ गई, मेडिकल भी आ गई, मुआशरा भी आ गया, लोगों की तवज्जो कि जिस निगाह से वो देखते हैं हर चीज देखनी चाहिए उसको भी आपने ले लिया, आपने इस्लाम का पैगाम भी सुना दिया। न सिर्फ ये कि आप जो है वो 50 आयतें लें जो तहकीकी मौजू, उसके लिए तो जरूरी है कि आप 10 आयतें, 20 आयतें, 50 आयतें एक ही चीज के बारे में कोट करें, लेकिन जब जरूरत नहीं है कि जनाब मुझे 50 आयतें आती हैं, अभी तो मैंने 15 सुनाई हैं, अभी तो 35 बाकी, नहीं 2 आयतें 3 आयतें लें और उसको जो है बयान करें, अहादीस लें उसको बयान करें। कोशिश करें कि जो मौजू आपने लिया है वो इतना मुतनव्वे या रंग बरंग या मुख्तलिफ अफराद की जहनी सलाहियतों तवज्जो को अपनी तरफ समेटने वाला हो। मुमकिन है किसी को कुरान से दिलचस्पी हो, जब आपने कुरान की 2 या 3 आयतें पढ़ी और उनको थोड़ा सा तशरीह की, क्या हुआ, फौरन जो है उसकी तवज्जो जो है वो क्लिक करेगी। कुछ को अहादीस से जो है ना वो दिलचस्पी होती है, आपने अहादीस सुनाई, कुरान सुनेगा वो, नोट भी करेगा, लेकिन तवज्जो कहां पे होगी। अब आपकी अगर कॉपी चेक करूं तो आपकी किसी न किसी ख्वाब के सफे पर कोई फूल बना होगा, कोई नंबर लिखा होगा, उसको काटा हुआ होगा। इंसान की अगर वो देख ली हो ना कि कितना हाजिर जहन होता है, उसको एक आधे घंटे की फोन कॉल करें, एक पेपर दे दें और एक पेन दे दें, फिर देखिएगा कि वो बात करते क्या क्या बनाता है और क्या क्या लिखता है। एक इंसान की तवज्जो को देखना हो आधे घंटे की फोन कॉल करें उसको, एक पेपर दे दें और एक पेन दे दें, वो बातें करते करते पता नहीं क्या क्या लिखेगा, क्या क्या मिटाएगा, दुनिया भर की ड्राइंग कर देगा। ये तवज्जो दिलाती है कि इंसान बहुत सी चीजें गैर इरादी तौर पे लिख रहा होता है, महसूस कर रहा होता है, सुन रहा होता है। कहते हैं कि बादशाह का एक कातिल था, बादशाह ने कहा जाओ ये खत लिख कर लाओ, हो गया। खत लिखने के लिए घर में लिख रहा था, लिख के बादशाह बुलाया, बादशाह ने कहा कि हम अपने वजीर को हुक्म देते हैं कि आधा किलो आटा ले आओ। ये तो मैंने नहीं कहा, वो हो माजद आवा साहब, माजद बादशाह साहब, वो असल में जब घर में तो बेगम ने कहा आधा किलो आटा ले आओ। बाजूकात गैर इरादी तौर पर इंसान निकल लेता है। क्या कह रहा था मैं, आधा किलो आटा ले आओ, और साथ साथ है मेरे नहीं है की पड़ी भी चाय वाय के दाम है, नहीं है चाय की होगी, चाय जाके पियेंगे। मेरे एक दोस्त थे, वह वाकई बताऊँ तालिबे इल्मी के जमाने का जो होता है ना, एक वाकई बताऊँ मैं आपको, ईरान में थे वो, और उस जमाने में कहते हैं कि बमबारी हो रही थी, कुम में जो है ना वो बम आके गिरा है, मिसाइल आके गिरा है। तो उस जमाने में गवर्नमेंट की बॉटल्स आती थी जिनमें दूध मिलता था, और वो सुबह ही मिलता था, फजर के बाद 1-1.5 घंटे के लिए उसमें भी लाइन रहती थी, खत्म हो जाता था। कहने लगे वो मिसाइल आके गिरा है मदरसे में, तवज्जो कीजिए, मिसाइल आके गिरा मदरसे में। कहेंगे ये तवज्जो नहीं हुई कि कोई जख्मी हुआ हो, अच्छा गिरी होगी, धमाका हुआ है, ये वो क्या दूध कहां से मिलेगा। तो बाद में वो शाम की चाय जो ना खटक रही होती है, तो मैं क्या कह रहा था जी, वापस आए ना, आए
तवज्जो मौजू के इंतखाब के बारे में
और
तवज्जो तक
पहुंचना, और
तो
बात उतनी करें। अब जो कुरान से दिलचस्पी रखता है वो कुरान सुनने लगता है, जो हदीस से दिलचस्पी रखता है वो वाकयात से ज्यादा दिलचस्पी रखता है। कोई तारीखी वाकया, कोई हिकायत, कोई अखलाकी नुक्ता बयान करें। उदू इला सबीली रब्बिक बिलहिकमा, हिकमत दानाई अकलमंदी की बात उधर लाओ, वल मौइदतिल हसना, और अखलाकियात मौइद हसना बंद नस्ली से बुलाओ। बाज लोग बहुत शार्प माइंड होते हैं, अकल हिकमत दानाई ठीक है ना, और सेंस की बातें उनको ज्यादा अपील करती हैं। कोई साइंस का नुकता बताए उनको सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ लोग होते हैं जिनको तारीखी वाकया, दादो नसीहत, प्यार मोहब्बत, अस्तग़फ़िरुल्लाह, सुभानअल्लाह, नमाज़े शब, इन चीज़ों से आते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि जो अक्ल दानाई वाला उसको नमाज़े शब सुनाए, जो नमाज़े शब वाला उसको अक्ल दानाई की बात सुनाए, नहीं। हर एक सामे के लिए मुख्तलिफ किस्म के सामे और मुखातब आपके पास मौजूद हैं, उनके लिए सब के लिए आपके पास चारेकार होना चाहिए। एक लकड़ी से सबको ना आके कोई मेडिकल का नुकता, इसमें फिर आप मालूमात आमा जो है वो उसके तक तवज्जो बढ़ेगी। मौजू पे गिरफ्त होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं हो कि मौजू को खूबसूरत बनाने के लिए चार इधर से चार उधर से आपने बिल बोर्डे जमा किया, और जनाब हो लिबास को भी खूबसूरत बनाया जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि जो बिल बोर्डा नजर आए, जो जो है वो बेल नजर आए, वो सबके सब लिबास पे लगा लेते, नहीं, बल्कि एक हिसाब किताब से होता है। उसी तरीके से तकरीर में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं सबको जमा करना, नहीं, लेकिन सब के लिए कुछ ना कुछ पैगाम होना चाहिए। दुरूद ए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई सवाल? दुरूद ए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक 5 बजे। अब असल मसला यह है कि मौजूद इन्होंने बहुत ही जो दिए हुए मुझे वो बहुत ही ज्यादा है, यानी अगर एक ही मौजू में गुफ्तगू शुरू तो 1 घंटा 1.25 घंटा ना काफ़ी है। तो मैंने मजमू जो टॉपिक रखा है वो रखा है रविश तबलीग। रविश तबलीग में कुछ जो है वो कल मैं बयान करूँगा किन किन रविशों से हम दौरे हाजिर में मिसाल के तौर पर तबलीग कर सकते हैं। मेंबर, दर्स, किताब, तालीम, ये भी तबलीग है, लेकिन जदीद दौर के मुताबिक हम किस तरीके से नौजवान नसल को जिंदगी पर ला सकते हैं। मोहम्मद।